Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Taittiriya Upanishad, Brahmananda Valli, presented by Swami Sri Vishwatmanandaji. Thank you. Om Namah Shivaya.
Jo grahan kar leta hai, वो फिर भविष्य में काम आएगी, वो तो आएगी ही आएगी, वो तो इसमें कोई शक ही नहीं है। लेकिन उसका काम अभी हो गया नारायण, उसे चाहे मालूम पड़े चाहे ना मालूम पड़े। तो ये सब विज्ञान में कोश ही है। विज्ञान माने विशेष ज्ञान। तो कर्म का ज्ञान भी विशेष ज्ञान है, उपासना का ज्ञान भी विशेष ज्ञान है, ब्रह्म का ज्ञान भी विशेष ज्ञान है, आत्मा का ज्ञान भी विशेष ज्ञान है। अब यो मत बोल देना कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है, स्वरूप होने पर भी ये ज्ञात तो नहीं हो रहा है ना, इसलिए विशेष ज्ञान की ही आवश्यकता है। वेदांत का सारी चोट इसी बुद्धि के ऊपर ही रहती है। उसकी चोट ये नहीं है कि आप क्या खावें क्या नहीं खावें, ये तो आप कर्म विवेक करेंगे धर्म विवेक करेंगे तो अपने आप आपको पता चल जाएगा। लेकिन बुद्धि जो आपको गलत जगह बैठाल करके सोच रही है, वहां से आपको हटाने का प्रयत्न वेदांत करता है। तो ये विज्ञान में कोश बोलते हैं, और इसी विज्ञान में कोश को जो अपना स्वरूप मानता है वो विज्ञान में पुरुष कहलाता है। तो विज्ञान में पुरुष कौन है? ये कि जो जानता भी है और जो करता भी है। क्रिया के साधन तो उसके पास हैं लेकिन करे ही नहीं तो वो करता नहीं है। तो विज्ञान में पुरुष करता भी है और प्राणमय और अन्नमय के साधनों को लेकर, मनोमय के साधनों को लेकर पुरुषार्थ भी करता है। असल में सारा शास्त्र जो है वो इसी विज्ञान में पुरुष के ही लिए बोला जाता है। जब मैं शुरू शुरू में वेदांत सुनता था ना, तो प्रश्न में महात्मा से भी करता था और अपने से भी करता था कि आखिर ये उपदेश किसके लिए है? ब्रह्म के लिए कि शरीर के लिए? तो उत्तर तो यही है कि जीव के लिए। लेकिन वो जीव क्या है, ये भी तो एक समस्या है ना। तो यही जो विज्ञान में पुरुष है ना, यही कर्ता बनता है, यही ज्ञाता बनता है, इसी को जीव बोलते हैं। माने बुद्धि और बुद्धि में आभासित चैतन्य और ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है ही है, इन तीनों को मिला करके जीव बोलते हैं। फिर सुन लो इस बात को। हमारे निश्चलानंद जी महाराज का ये वाक्य है, उन्होंने जैसे गणित में फॉर्मूला बना लेते हैं ना, तो ऐसे वो बना देते हैं। तो बोले साधिष्ठान साभास बुद्धि का नाम जीव है। ये फॉर्मूला बन गया नहीं? अधिष्ठान के सहित माने ब्रह्म, और साभास अर्थात चैतन्य का बुद्धि में पड़ा हुआ परछाई या आभास, और बुद्धि स्वयं, इन तीनों को मिलाकर के जीव होता है। सारे दुनिया भर के काम भी यही करता है, परमार्थ के यही काम करता है, यही मोक्ष चाहता है, यही बंधन में रहता है, इसी के लिए सारे शास्त्रों का उपदेश है। और ये ब्रह्मविद जो बनता है ये यही विज्ञान में कोश ही बनता है नारायण, विज्ञान में पुरुष। तो उपक्रम करती हैं श्रुति, तस्मात् वा एतस्मात् मनोमयात् अन्योऽन्तरः आत्मा विज्ञानमया तेनैष पूर्णः सैवा एष पुरुषविधा एव तस्य पुरुषविदताम् अन्वयम् पुरुषविदः। इस मनोमय कोष के भीतर इसका आत्मा अर्थात इसका सत्ता स्फूर्ति देने वाला, जिस वजह से ये मनोमय कोष काम करता है, जिस आधार पर, वो विज्ञान में है। तेनैष पूर्णा, उसके द्वारा ये मनोमय कोष जो है ये पूरित है, व्याप्त है। इसकी क्या शक्ल है? बोले जो तुम अपने अन्नमय की शक्ल मानते हो ना, वही शक्ल है। जैसे कहते हैं तुम भगवान के हो, तो स्त्री शरीर बोलती है, महाराज हम तो स्त्री हैं, हम कैसे अपने को ब्रह्म जान लें। वाले वो समझते हैं पुरुषों का ही अधिकार है ना। तो ये स्त्री पुरुष का भेद तो स्थूल शरीर में है ना, तो ये जानना किसके लिए बताया जा रहा है, किसको उपदेश दिया जा रहा है? स्त्री शरीर में जो स्त्री नहीं है, वो जो करता है, उसके लिए उपदेश है। पुरुष शरीर में जो पुरुष नहीं है, उसके लिए उपदेश है। उसी को जीव बोलते हैं। जीव माने जिसका जीवन है, इस शरीर में जो चल फिर रहा है, बोल रहा है, कर रहा है, उसमें ये तीन चीजें हमेशा रहती हैं, साधिष्ठान, साभास, अंतःकरण या बुद्धि या अज्ञान। ऐसा अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, 26 प्रक्रियाएं वेदांत में हैं जीव के संबंध में। थोड़ा थोड़ा अंतर लोग कर देते हैं। ये सिद्धांत लेश संग्रह एक ग्रंथ है, तो उसमें ये 26 प्रक्रियाएं दे रखी हैं। साधिष्ठान, साभास, अंतःकरण, साधिष्ठान, साभास, बुद्धि, साधिष्ठान, साभास, अज्ञान, साधिष्ठान, साभास, अविद्या, लब्बे लुबाब, सबका एक ही है। सार बात तो सबकी एक ही है कि तीन चीजें उसमें होती हैं। एक तो परमात्मा स्वयं, एक परमात्मा का किंचित आभास, और एक जिसमें वो आभास है वो। तो ये विज्ञान में पुरुष जो है, ये इससे मनोमय कोष पूरित है, और इसकी शक्ल जो है वो वही है जैसी आपके अन्नमय की अपनी मानते हैं। अब आपके भगवान ने पुरुष शरीर दे दिया तो आप पुरुष हो गए, परंतु पुरुषाभिमानी मत बनो। स्त्री शरीर दे दिया तो स्त्री हो गए, लेकिन स्त्रियाभिमानी मत बनो। ये स्त्री पुरुष तो अपने को मान के धर्म करने के लिए है, तत्व ज्ञान के लिए स्त्री पुरुष का भेद नहीं होता। तस्य श्रद्धैव शिरः। अब कहते हैं कि जब पुरुष कह दिया तो इसमें अंगों की कल्पना करो, जैसे और कोषों में कल्पना की थी, इसका सिर क्या है, इसका दायां पक्ष क्या है, बायां पक्ष क्या है, धड़ क्या है, पूंछ क्या है। तो कहते हैं श्रद्धैव शिरः, इसका सिर जो है वो श्रद्धा है। अगर आपको वेद में, वेद वचन में और वेद वचन सुनाने वाले आचार्य में, गुरु में श्रद्धा नहीं है, तो आप उसके कहे अनुसार न अर्थ ग्रहण कर सकते हो और न उसको अंजाम दे सकते हो। श्रद्धा माने होता है श्रद्धा, श्रत माने सत्य और धा माने धारण करने वाली। सत्य को यथावत, सत्यवत धारण करने वाली जो बुद्धि है उसको श्रद्धा बोलते हैं। पंजाबी लोग एक वाक्य बहुत अच्छा बोलते हैं, बोले सतवचन महाराज। सतवचन महाराज माने जो आप कह रहे हो बिल्कुल ठीक। तो ये सतवचन महाराज जो है, इसी को श्रद्धा बोलते हैं। महाराज में भी श्रद्धा है और जो वचन शास्त्र का बोला वो भी श्रद्धा, उसमें भी श्रद्धा है कि ये सही है, और ये भी श्रद्धा है कि हम हमारा इससे कल्याण होगा। तीनों श्रद्धाएं जब मिलती हैं तब असली श्रद्धा होती है। बोले जी आजकल वर्णाश्रम नहीं चलता है, तो ये श्रद्धा हुई कि अश्रद्धा हुई? वेद में ये तो अश्रद्धा हो गई ना, अब एक नई फिलॉसफी निकालो फिर, तो वो तो अवैधिक ही होगी। अच्छा, तो तस्य श्रद्धैव शिरः, वेद वचन, आचार्य वचन और उस कर्म का फल, कर्म और कर्म का फल, इसमें जो सत्यवत बुद्धि है उसको बोलते हैं श्रद्धा। सत वचन महाराज, सही है, ऐसा ही है। एक महात्मा थे तो वो लेट के सत्संग करते थे, उनकी स्वास्थ्य खराब था, उम्र 90 वर्ष के होकर मरे और 8 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था उन्होंने, मतलब महात्मा, और काशी में अच्छे विद्या ग्रहण किए, विरक्त थे, सब बातें अच्छी अच्छी थी, परंतु शरीर का प्रारब्ध ऐसा था कि रोगी थे, तो लेटे लेटे सत्संग करते थे, तो तर्क वितर्क उनसे करते, मैं भी जाता था उनके पास, तो तर्क वितर्क करते तो वो समझाते अपने शास्त्र की रीति से। अब जब तर्काभिमान होता है ना अपने मन में कि हम भी कुछ तर्क कर सकते हैं, तो सामने वाले की बात को चलने नहीं देता वो, तो महात्मा जी की बात को काटते रहे, मैं भी काट देता था, तो उनका फिर एक ही रामबाण था, बोले भैया बात तो ऐसी है ही जैसी मैं कह रहा हूं, अब विचार कर लेना, अब समझ में ना आ रही फिर समझ में आ रही। तो ये श्रद्धा की कमी से होता है। महाराज जी से भी हम कभी तर्क वितर्क करते थे, तो उनकी बहुत सी जो धर्म संबंधी बातें थी वो हमारे आज के दिमाग को ज्यादा अपील नहीं करती थी, तो उसमें भी तर्क वितर्क कर देते, तो पहले समझाते, फिर जब देखते कि अभी समझ नहीं रहा है तो बोले अच्छा बाबा ऐसे ही सही। क्या फर्क पड़ता है कोई एक माने या कोई एक ना माने। तो इस श्रद्धा की कमी से जो है ये सब बातें होती हैं। और बोले नहीं, बात तो वही है जो आप कह रहे हो, हमारी समझ में नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं है, हम उसे स्वीकार करते हैं। श्रद्धैव शिरः, वेदार्थ में अगर श्रद्धा नहीं है तो कभी तत्व ज्ञान होगा ही नहीं। महाराज जी ने तो एक बड़ा कड़वा वाक्य बोला है, वो कहते हैं कि जो उपनिषद को किताब मानते हैं, ये जानबूझ के किताब शब्द का प्रयोग किया है, ये मुसलमान ये लोग अपने को बोलते हैं अहले किताब, कुरान में जो लिखा है बस वही फाइनल है, और अहले बाइबल, बाइबल में जो लिख दिया वो नारायण अंतिम है, फाइनल है। तो बोले जो उपनिषद को किताब मानते हैं, वो कहते हैं किताब है ये तो किसी ने लिख दिया है, दूसरी किताब बना लो। तो जो उपनिषद को किताब बनाते हैं उनको हम वेदांत सुनाएंगे ही नहीं। क्योंकि उनका उद्देश्य ही पूरा नहीं होगा, किताब मानते हैं तो किताब तो कोई भी लिख सकता है, अब नाम लेने की जरूरत नहीं है, 85 महात्मा लोग आजकल किताबें चल रही हैं और वो उपनिषद से मेल नहीं खाती हैं, तो उनको पढ़कर लोग अपने को विद्वान तो समझते हैं लेकिन तत्व ज्ञान तो किसी को होता नहीं है। जो इसके प्रमाण को स्वीकार करेगा, ये विद्या है, ये कोई शब्द नहीं है, तत्वमसी महावाक्य जो है ये कोई वाक्य नहीं है कि कान से सुन लिया तो हमको ज्ञान हो जाएगा, कान से ही सुनते हैं सब, और कैसे सुनते हैं। तो इसमें तत्पदार्थ और त्वम पदार्थ का क्या अर्थ है, एकता किस ढंग से है किस ढंग से नहीं है, ये सब विचार जब तक पूरा नहीं होता तब तक तत्वमसी का फायदा नहीं होता। इसीलिए महात्मा लोग आजकल प्योर वेदांत नहीं सुनाते हैं, साधन सहित ही सबको सुनाया जाता है, क्योंकि वरना वो बुद्धि जो है वो गड़बड़ करती है और ब्रह्म ज्ञान की जगह वो खल ज्ञान हो जाता है। तो तस्य श्रद्धैव शिरः, ये इसका शिरोभाग है विज्ञानमय का। अगर केवल आप इसे कर्ता तक ही सीमित रखोगे ना, ये विज्ञाता भी यही है, विज्ञाता और कर्ता, पहले जानता है फिर करता है, बीच में इच्छा आती है, जानाति इच्छति करोति, तो पहले यही विज्ञाता बनता है फिर यही इच्छा करता है फिर यही कर्म करता है, 3-in-1 है। और इसी को जीव बोलते हैं विज्ञान में पुरुष को। तस्य श्रद्धैव शिरः ऋतम दक्षिणः पक्षः, इसका दायां पंख ऋत है। ऋत कहते हैं शास्त्र में जैसा लिखा है वैसा ज्ञान, जिसको श्रोत्रिय बोलते हैं ना, वेद को रट लिया, मान लो अपनी शाखा का वेद किसी को याद है तो उसको श्रोत्रिय नहीं बोलते हैं, अपनी शाखा के वेद का स्वाध्याय जो करता है, माने केवल पाठ नहीं अर्थ सहित जो उसको धारण करता है, तो वो श्रोत्रिय है। तो श्रोत्रिय के लिए कहा कि ये ऋत है, ऋतम दक्षिणा पक्षा, और सत्यम उत्तरा पक्षा। अब जैसा अर्थ समझा है वैसा ही हमारे जीवन में उतरने लगे, व्यावहारिक प्रैक्टिकल जिसे बोलते हैं। तो ये जितना साधन भजन महात्मा लोग बताते हैं ना, ये उसी को प्रैक्टिकलाइज करने के लिए ही बताते हैं, वरना वो थ्योरी थ्योरी रह जाएगी। थ्योरी जो है वो तो है रित, और उसकी जो प्रैक्टिस है उसको बोलते हैं सत्य। ये रित और सत्य जब दोनों होते हैं तब जाकर के ये विज्ञान में कोश पूरा होता है। पंख एक पंख से उड़ नहीं सकता पक्षी। सत्यम उत्तरा पक्ष योग आत्मा, इसका धड़ क्या है, बोले योग। तो योग माने शीर्षासन नहीं है या शवासन नहीं है, किसी आसन का नाम योग नहीं है। आजकल तो योग शब्द ही नहीं बोलते, वैसे सही उच्चारण तो है योग। अब अंग्रेजी में लिखेंगे तो अ का जो है वो ए लगा देंगे पीछे तो योगा हो गया। अब आजकल कोई योग बोलता ही नहीं है, योगा बोलते हैं सब लोग। महाराज जी तो बोलते हैं कि आजकल योग नहीं है योगा है, और वो या कुछ जा बोलते थे तो बोले योगा भी नहीं है जोगा है, जोगी है जोगी। हमारे यूपी में एक जाति होती है जोगी, वर्ण संकर हैं वो लोग, जिनके पिता सन्यासी थे कभी भ्रष्ट हो गए, तो उनकी जो संतान है वो जोगी कहलाते हैं। तो शब्दों की भी अपनी महिमा है नारायण। तो कहते हैं योग, योग इसका आत्मा है, आत्मा माने सार सर्वस्व विज्ञानमय का। अगर आपका माइंड जो है बुद्धि जो है वो हमेशा उत्तेजित ही रहती है, ये जान लें ये कर लें ये समझा दें ये समझ लें, ये अभी नहीं मिला, ये और मिल जाए, तो ये इसका मतलब असमाहित बुद्धि है, समाधान को प्राप्त नहीं। भाष्यकार ने तो इसका अर्थ समाधान ही किया है, योग माने समाधान। तो समाधान बुद्धि क्या है कि जो एक तरफ बैठ गई बुद्धि, हमें तो इधर ही चलना है और ये ही करना है। चैतन्य महाप्रभु प्रकाशानंद सरस्वती से मिलने गए तो प्रकाशानंद जी ने कहा कि हमने सुना है तुम बड़े बहुत भारी नैयायिक हो, शास्त्र के इतने बड़े विद्वान होकर के ये तुम नाचते गाते हो, ये कोई अच्छी बात है? अरे ब्रह्म विचार करो। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो है बड़ा सुंदर उत्तर दिया, उन्होंने कहा हमारे गुरुजी ने हमको इसी काबिल समझा होगा तो उन्होंने जो बता दिया वो ही हम करते हैं, हम अपनी तरफ से क्यों करें कि हम ये करें कि हम ये करें। महाराज जी ऐसे बोलते थे, करो वही जो गुरु कहे, जानो वही जो शास्त्र कहे। गुरु के ऊपर भी शास्त्र का संविधान है। महाराज जी की तो परिभाषा ही गुरु की ये है कि जो शास्त्र के अनुसार आपको शंसन करे, वस्तु तत्व का ज्ञान करावे, वो तो गुरु है। और जो कहे कि शास्त्र में भले ही लिखा हो लेकिन हम जो कहते हैं उसको तुम मानो नारायण, तो वो गुरु नहीं है। उसके कहने को मानो, आप शिष्य हो तो संसार में व्यवहार का जो विषय है उसमें आप मान लो कि ऐसे करना चाहिए ऐसे नहीं करना चाहिए, लेकिन आत्मा ब्रह्म नहीं है या ब्रह्म ही नहीं है या शास्त्र जो है वो सब धोखा देने वाले हैं, संसार में कोई महात्मा ही नहीं है, वासना रहित कोई व्यक्तित्व तो हो ही नहीं सकता, ऐसे आजकल बोलते हैं, तो ये सब अशास्त्रीय बातें हैं। एक का तो नाम लेके बोले वो कहते हैं कि कोई शास्त्र मत पढ़ो। तो बोले आपकी किताब पढ़े कि नहीं? तो शास्त्र तो मत पढ़ो लेकिन हमारी किताब पढ़ो, यही तो मतलब हुआ ना। अरे जब किताब ही पढ़नी है तो वेद और वेदांत और इतना शास्त्र भरा पड़ा है, पढ़ो। गुरु जी की लिखी हुई किताब भी पढ़ो लेकिन बोध उसी से होगा जो शास्त्र के अनुकूल है। शैली आपकी अलग हो सकती है बताने की, ये तो अलग युद्ध बात है। मधुसूदन सरस्वती जी महाराज के लिए महाराज से बोलते थे कि जब हम मधुसूदन सरस्वती जी को पढ़ते हैं तो उन्होंने कई जगह शंकराचार्य से थोड़ा हट करके बात बोली है, लेकिन सिद्धांत में वो अद्वैत को ही स्वीकार करते हैं। तो महाराज जी कहते हैं कि हमको बल मिल जाता है कि सिद्धांत तो वही होना चाहिए जो शंकर है, लेकिन उसकी प्रक्रिया जो है वो सामने वाले को देख करके स्वीकार कर लेनी चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे जिज्ञासु की समझ में आ जाए, समझ में तो यही आना है कि एक मेवा द्वितीयम, केवल एक ब्रह्म अद्वितीय ही है, उसमें कोई भेद नहीं है। तो योग जब तक ये चित्त शांत नहीं होता है, एक तरफ बैठता नहीं है, समाधान को प्राप्त नहीं होता है। और ये खेतों में आपने देखा होगा, अब यहां बॉम्बे में शायद खेत ना देखते हो लेकिन गांवों में तो खेत होते हैं ना, तो उसमें पहले तो हल से जुताई करते हैं उसके, तो उबड़ खाबड़ हो जाता है, फिर उसमें खाद डालते हैं, बीज डालते हैं, सब पानी डालते हैं और फिर उसके ऊपर एक पटरा चला देते हैं, माने वो सब ऊपर से सम हो जाता है, फिर उसमें उबड़ खाबड़ पना नहीं होता। तो ये पहले तो जो साधक होता है वो उसकी उहापोह चलती रहती है, ये ठीक है कि ये ठीक है, नहीं थोड़ा ये भी ठीक है थोड़ा वो भी ठीक है, तो ये उबड़ खाबड़ रहता है। फिर जब एक कोई सद्गुरु मिल जाते हैं और कहते हैं नहीं ये यही ठीक है, तो मानो वो पटरा चल जाता है, अब वो उबड़ खाबड़ पाना जो है ना वो समाप्त हो जाता है। इसी को समाधान की स्टेज बोलते हैं। सम्यक आधान, बीज भी पड़ गया और अब उसमें उबड़ खाबड़ पाना नहीं है। तो योग योग आत्मा महपुच्छम प्रतिष्ठा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ना। इसकी पूछ क्या है विज्ञान में पुरुष की, माने विज्ञान में पुरुष को समझ लो खोपड़ी है ये हमारी, ये विज्ञान में पुरुष है। तो इसका आधार क्या है, ये जो ज्ञान हो रहा है जहां पर, वो किस आधार में ज्ञान प्रकट हो रहा है, चाहे वो कर्म विषयक हो चाहे ब्रह्म विषयक हो किसी विषय का हो, अधिष्ठान क्या है इस बुद्धि का, ऐसा समझो। अधिष्ठान शब्द में प्रयोग जानबूझ के नहीं कर रहा था, क्योंकि अधिष्ठान तो सबका ब्रह्म ही है। तो बुद्धि का आधार क्या है, आधार और अधिष्ठान में यही अंतर है। किस आधार पर, अब मैं इस पर कुर्सी पे बैठा हूं तो मेरा आधार तो है कुर्सी और अधिष्ठान है धरती, और धरती का भी अधिष्ठान है आकाश, और आकाश का भी अधिष्ठान है ब्रह्म। तो अधिष्ठान तो सबका ब्रह्म ही है, लेकिन आधार तो जिसको लेकर के है वो आप वही है। तो बुद्धि का आधार क्या है, तो बोले महपुच्छम प्रतिष्ठा, ये जो महत तत्व है यही इसकी पूंछ है। अब ये महत तत्व की बात जरा है गंभीर, और घड़ी तो कह रही है कि टाइम हो गया है, तो इसलिए कल के लिए रखते हैं इसको। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।